ॐ शांति ॐ शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को फिर से पहला पाठ पक्का कराया है। बाबा ने बार बार ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। दूसरी बात बाबा ने कही कि अमरनाथ बाबा आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं अमर बनाने के लिए। सातवीं बाबा ने कहा कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, भल भक्ति में भी सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन उससे क्या प्राप्ति होती है वो तो उनको पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तुम बच्चे सत्यनारायण की कथा सुनते हो तो जाकर के क्या बनते हो, राजाओं का राजा। और वो लोग तो अलग काल के राजा बनते हैं, थोड़े समय के लिए बनते हैं, लेकिन तुम 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनते हो। और अमर कथा सुनने से तुम जाकर के अमर बनते हो। और सत्ययुग में कोई काल नहीं खाता है, वहां पर तो बाबा ने कहा जैसे समय होता है उसमें साक्षात्कार होता है, और ये अनुभव होता है कि ये शरीर पुराना हो गया है, खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं, तो तुम अमर बन जाते हो। बाबा अमरनाथ बच्चों को अमर कथा सुनाते हैं। और अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 23 जून 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हारा पहला सबक अथवा पाठ है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। मीठे बच्चे तुम्हारा पहला सबक अथवा पाठ है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है। तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है। इसका उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। कितनी खुशी है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, लेकिन क्या करना है, सिर्फ पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो। बाबा जब क्लास में आते थे बाबा सबको दृष्टि देते थे, और दृष्टि देते ही सबकी बुद्धि बाबा और आत्मस्थिति में हो जाती थी। फिर भी बाबा पूछते हैं, बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है कि कौन सी स्मृति आई कि हम देही आत्मा है। कौन सी स्मृति कि हम देही आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते। बाबा बार बार पक्का कराते हैं और बाबा समझाते भी रहते हैं, बीच बीच में भूल जाते ना, फिर बाबा को बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ती है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते। बाबा को पता है इसलिए बाबा बताते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो, आत्म अभिमानी होंगे तो क्या होगा, बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो कौन याद आएगा, तो लौकिक संबंधी आदि याद आएंगे। पहले पहले ये शब्द याद रखना है, कौन सा, कि हम आत्मा हैं, मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये पक्का करना। आज बाबा ने कितनी बार ये पक्का कराया है कि हम आत्मा हैं, आत्मा 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है और हम आत्म अभिमानी होकर बैठे, बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं। आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी आदि याद आएंगे। पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं, मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं, आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे। देह अभिमान के कारण कितने नुकसान हो गए, तो बाबा पक्का कराते हैं, आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाबा कहते बाप याद नहीं आएगा, फिर क्या हो जाएगा, बुद्धि चली जाएगी। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले पहले ये सबक मीन्स पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद के बाप के बच्चे हैं। आत्मा और बाबा की बच्ची हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं। इसलिए पहले पहले ये सबक पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा बेहद के बाप के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं हम ऐसे याद करेंगे तो बच्चों को ये सिखलाया जाता है। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता, लौकिक में कभी नहीं कहेंगे बच्चे को कि तुम अपने बाप को याद करो, वो तो ऑटोमेटिकली याद करता है, लेकिन यहाँ पर बाबा को सिखलाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं, मुझ परलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध आदि याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत। उस दिन भी बाबा ने क्या कहा, बाकी सब बातों में नहीं है, सबसे बड़ी मेहनत किस में लगती है, आत्म अभिमानी बनने में। तो बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं, कौन समझा रहे हैं? बोलो, बाबा समझा रहे हैं। हम आत्माओं का बाप जिनको सब याद करते हैं, बाबा आओ, आकर इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, इस मृत्यु लोक में क्या करना, क्या करना, बाबा कहते बिल्कुल नहीं रहना। रहते हुए भी बाबा कहते बुद्धि बिल्कुल डिटैच हो जाए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल नहीं रहना है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं, अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो जो यहाँ बैठते हैं, पहले पहले क्या करना है बोलो, अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। बाबा कहते यहाँ बैठे तो क्या करना है, जो यहाँ बाबा के सामने बैठते थे ना, तो बाबा कहते हैं अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे, जो यहाँ जब बैठते हैं तो पहले पहले अपने को आत्म समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो पुरुषोत्तम बन जाए, ऐसा नहीं, बाबा तो बना ही रहे हैं लेकिन युक्ति क्या बताई है कि मुझे याद करो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने, सत्युग में तुम देवता थे, अभी तुम जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट मुड़ा हुआ है, दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, वह भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है, दिन अलग है, रात अलग है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग वो अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने कि भक्ति मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, जिनको बाबा पढ़ाते समझते वही जाने ना, जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। बाबा कहते ज्ञान कितना भी किसी को समझाओ वो समझ नहीं सकेंगे, जिन्होंने बाबा को पहचाना वही समझ सकेंगे ना। तो बाबा कहते और न जाने कोई, ये है गुप्त खजाना। कौन सा गुप्त खजाना? खुशी का खजाना है, ये है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं बच्चे सवेरे उठकर घूमो फिरो, बाबा हमेशा कहते थे, बाबा के पास बच्चे आते थे, बाबा कहते घूमो फिरो कुछ भी करो लेकिन क्या करो, बाबा की याद में रहो और पहला सबक पक्का करो। और अभी भी कई योग के बाद घूमने जाते हैं और कई कई तो बातें करते जाते हैं, कोई कोई तो बस ऐसे जाते हैं, लेकिन एकदम शांति से बाबा की याद में जाने से तो बाबा की भी बहुत याद के द्वारा बहुत प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, परंतु पहला पहला सबक ये याद करो कि हम आत्मा हैं ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ाते, आत्मा है ना शरीर है, रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं। ये दुख की दुनिया अब बदलनी है, सत्युग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है, ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। कौन सी नॉलेज है? ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर, स्पिरिचुअल फादर, वो स्पिरिचुअल फादर भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। वह है देही बाप, देही का बाप, बाबा ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर, वह है देही मिस आत्मा का बाप। बाकी तो सब देह के ही संबंधी हैं। अब देह के सब संबंध तोड़ एक बाप से जोड़ना है। गाते भी हैं, क्या गायन करते हैं? तो बाबा बता रहे हैं कौन सा गायन करते, भक्ति में तो किया, यहाँ क्या कहते हैं बच्चे, क्या बोलते बोलो, मैंने बोलो बोलो ना, क्या है मेरा तो, धीरे से बोलते हैं, फिर से बोलो, दूसरा ना कोई पक्का ना, भक्ति में गायन करते ना, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को याद नहीं करते। अब अंतर बोलो, किसना किसको याद करेंगे? तो यहाँ बाबा ने क्या बताया, हम एक बाप को याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह तो छोड़नी है, ये भी तुमको ज्ञान मिलता है। वो लोग पुरानी देह से मोह होता है छोड़ने के टाइम, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन बाबा के बच्चों को क्या है, हमें ये पुरानी देह तो छोड़नी है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी तुमको ज्ञान मिलता है, ये शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बल। कई बार हमने कई बाबा के बच्चों को देखा है, उनकी योग की अवस्था इतनी अच्छी होती है, जब देह त्यागने को होता है बाबा बाबा करते बाबा की याद में होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अवस्था बनानी है, इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अंदर अपने अंदर घोटते रहो। क्या घोटना है? बाप बीज और झाड़ को याद कर, अपने अंदर घोटते रहो, बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृत्तांत है, ये भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, पढ़ाने वाला बाबा है वही सब पढ़ाते हैं। ये पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना, एक तो पढ़ाई याद रहे, दूसरा बाबा ने क्या कहा, पढ़ना तो है ना। सत्युग में तो देहधारी पढ़ाते, सत्युग में पढ़ाई होगी, ऐसी पढ़ाई होगी जो कलयुग में होते, वहां तो कुछ भी नहीं है, बस बच्चे गए स्कूल में खेल कूद के आ गए, ड्राइंग देखा बुद्धि में बैठ गया, थोड़ा सा किया और गए और वापिस आ गए, इतनी पढ़ाई। फिर भी कोई ना कोई टीचर तो होगा ना उनका पढ़ाने वाला। कभी कभी मनोहर दादी को बड़ी दीदी बहुत हंसाती थी, बड़ी दीदी आपस में दीदी और दादियां बहुत मीठी मीठी रू रुहान करती थी। बड़ी दीदी मनोहर दादी को कहती थी, क्योंकि मनोहर दादी ज्ञान योग में बहुत ऐसे मुरली सुनाने में ऐसा पक्का करती थी ना, तो दीदी हंसी में कहती थी तुम तो कृष्ण को पढ़ाएगी, और मनोहर दादी कहती हाँ क्यों नहीं पढ़ाऊंगी। तो बाबा भी दोनों दादियां दीदियां सब आपस में मीठी मीठी रूहान करती थी। बाबा कहते वहां तो देहधारी पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं सत्युग में देहधारी पढ़ाते हैं, ये तो देहधारी नहीं है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। कल्प कल्प ऐसे पढ़ाया, फिर कल्प बाद ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं। परंतु माया भी कोई कम नहीं है, बाबा पक्का कराते माया कोई कम नहीं है, सब समझना है, परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है अब याद है ना, 84 के चक्कर का भी गायन है, ये मनुष्यों की ही बात है। बाबा कहते हैं ये मनुष्यों की बात है, बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा, कई आते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे तुम पहले अपना तो कल्याण कर लो, तुम्हारा कल्याण होगा तो जानवर का कल्याण होगा। व्यक्ति सुधरा उनके पास जो रहते हैं जानवर, वो भी बहुत सिविलाइज होते हैं, और नहीं सुधरा वो भी वैसे हो जाते हैं। तो बाबा कहते बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवरों आदि की बात ही नहीं, आप चले जाओ साइंस के स्कूल में, वहां जाके इंजीनियर की बात करेंगे तो कहेंगे यहाँ तो साइंस की बात चल रही है। बाबा कहते यहाँ तो स्पिरिचुअल ज्ञान चल रहा है, यहाँ पर जानवरों की तो बात ही नहीं जो आपको बताई जाए। अरे यहाँ तो जानवर की बात ही नहीं है, बाप भी बच्चों से बात करते हैं, बाहर वालों को तो बाप जानते ही नहीं। बाहर वाले आएंगे बाबा से मिलने आएंगे और बाबा को देखते कहेंगे इनके गुरु को देखा, इनके गुरु को देखा। बाबा कहते हैं बाबा तो क्या बच्चों से बात करते, बाहर वालों से बात नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं है, तो वे क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं, बाबा के पास आते थे कई आते थे नए नए, कहते हमको बाबा से जरूर मिला। अरे मिला करके क्या करेंगे, और मिलना भी चाहते, समझेंगे नहीं। फिर बाबा के पास आते थे, अज्ञानी होते थे ना, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ की बातें पूछते थे। उनको ये भी पता नहीं इतनी बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी से हम क्या पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाहर वाले तो बाप को जानते नहीं, तो वे क्या बात करेंगे। कोई तो कहेंगे हम बाबा से मिलने जाते हैं, अब कुछ जानते भी नहीं है, बैठ करके उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद ही पूरा नहीं समझते, 7 दिन का कोर्स करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको मुरली पर लाते, एक पेज लाते हैं, एक पेज सुनाते हैं, आधा पेज सुनाते हैं। तो बाबा कहते 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा समझते नहीं है कि ये हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भगत हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ज्ञान की सब बातें बैठ जाती। कौन है पुराने भगत हैं? जो पुराने भगत है ना, सबके सब है, तभी तो यहाँ बैठे हो। पुराने भगत नहीं होते तो यहाँ आप बैठ भी नहीं सकते थे। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में ज्ञान की सब बातें बैठ जाती है। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम बुद्धि में बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भगत। पुराने तो पुराने भगत कौन है? बाबा के बच्चे। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भगत। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको ये थोड़ी पता है। ये भी नहीं पता है कि बाबा हमको भक्ति का फल दे रहे हैं, हम ही पुराने भगत हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो किसको ये पता थोड़ी है। गाया भी जाता है कि भक्ति का फल देने के लिए भगवान आते हैं, परंतु किसको ये थोड़ी पता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर ये पढ़ते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। 84 जन्म का चक्र की कहानी बाबा के तो मनुष्यों को ही बताएंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य जानेंगे ना। तुम आगे कुछ भी नहीं जानते थे, सब कुछ करते थे लेकिन जानते नहीं थे। शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिवाय नमे कहते हैं, परंतु क्यों करते हैं कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं, वह कहाँ गए कुछ भी पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया। भारतवासी तो क्या है, बहुत सी कहानियां बता मिक्स कर देते हैं ना, तो वो लोग तो उनका तो एक ही है तो बता देते हैं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को तो कोई भी जानते नहीं। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंच से ऊंच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं, पूजा भी जास्ती करते हैं, शिव की सेवा भी जास्ती करते हैं। सर्व का सदगति दाता है ना, तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, इतना हाईस इतना ऊंच, और पढ़ाते कैसे, बहुत साधारण रीति से बच्चों के साथ बैठते, कितना साधारण रीति से बच्चों के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को भी बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में और जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, श्रीनाथ का मंदिर है राजस्थान में और जगन्नाथ का मंदिर है पूरी उड़ीसा में। तो बाबा अंतर बता रहे हैं, श्रीनाथ के मंदिर में जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही जगन्नाथ अर्थात जगतनाथ के 5 चावल का हांडा चढ़ाते। वहां भी जानते हैं ना, वहां पर बहुत बड़ा एक हांडा होता है और वो जैसे ही उसमें बनाते हैं चार भाग में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। तो बाबा कहते वो भी रहस्य नहीं जानते चार भाग में चार युग का। तो बाबा कहते हैं जगन्नाथ अर्थात जगतनाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते, फर्क क्यों होता है? ये फर्क क्यों बाबा कहते कारण जानना चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला और जगन्नाथ को भी काला बना दिया है, कारण तो कुछ भी समझते नहीं। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे? बाबा प्रश्न पूछे जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को कहेंगे या राधे कृष्ण को कहेंगे? राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में संबंध क्या है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम ही पूजे थे और हम ही पुजारी बने, चक्कर लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई भी मनुष्य नहीं पढ़ाते, पढ़ाने वाला कौन है? बाबा है। तो बाबा कहते हैं ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने वाला तो बाबा है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है हम पूजे देवता थे फिर पुजारी बने, चक्कर लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवानों वांचे ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है, दुनिया में कितनी भक्ति करते हैं तो कितने लीन हो जाते हैं, तो बाबा को कहना पड़ता है यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं। जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद कर भक्ति भी करते हैं और पतित पावन बाप को भी याद करते हैं। तुम पतित बने हो फिर पावन भी जरूर बनना है। ये है ही पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ नहीं है, ये किसको पता ही नहीं है। कहते हैं ना वैकुंठ गया तो फिर उनको, बाबा कहते जब वैकुंठ चला गया तो फिर उनको क्यों नरक का भोजन खिलाते हो? तो फिर तुम उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? अब नरक के भोजन में क्या होगा, तामसिक चीजें हैं, प्याज लहसुन पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। कहेंगे ये व्यक्ति खाता था इसको ये चीज खिलाओ, ये व्यक्ति खाता था इसको ये चीज खिलाओ, क्या है जो वो खाता था वही खिलाओ और इसको कोई नई चीज खिलाओ। तो बाबा कहते हैं कि वो स्वर्ग में चला गया फिर नरक का खाना क्यों खिलाते हो? सत्युग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ के फल फूल कितने हैं, फलों में भी कोई रस नहीं है, फूलों में भी क्या है, बाहरी सजावट तो है लेकिन अंदर की खुशबू तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ क्या है, ये है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो क्या होगा, विकर्म विनाश होगे। बाबा ने एक पक्का करा दिया, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो, क्या कहते हैं बाबा, हम 5000 वर्ष पहले ये बने थे। बाबा से आते थे बच्चे, बाबा उनको याद कराते थे, बच्चे याद करो पहले कब मिले थे। जो निश्चय बुद्धि होते थे वो कहते थे बाबा हम पहले भी मिले हैं, कल्प पहले भी मिले हैं, पक्के निश्चय से बोलते थे। और जो निश्चय बुद्धि नहीं है वो सोचेगा बाबा बाबा हाँ मिले तो हैं लेकिन कब मिले वो याद ही नहीं आता है। तो बाबा कहते तुमको भी याद है ना कि तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले ये बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा को ही अमरनाथ कहते, शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसी नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते। बाबा कहते एक को थोड़ी सुनाएगा, सब पार्वतियां हैं। ये वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुम बच्चों ने समझा है। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव वह भी ब्राह्मण था। अब बाबा पक्का करा रहे हैं आदि देव ब्रह्मा वह भी ब्राह्मण ही था। देवता नहीं कहेंगे, देवता जाते हैं भविष्य में, आदि देव ब्राह्मण था। देवता नहीं कहेंगे, आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम है। कल देखो प्यारी मातेश्वरी जी का दिवस आ रहा है और मम्मा के कितने नाम रखे हुए हैं, गिनती करते जाओ, काली, दुर्गा, सरस्वती, कितने नाम रखे हुए देवियों के, तो कितने नाम रख देते हैं। कल मम्मा का दिवस है, कल प्रातः मुरली क्लास के बाद प्यारी प्यारी मम्मा को भी भोग स्वीकार कराया जाएगा, तो कल का प्रोग्राम बाद में बताते हैं, लेकिन कल तो प्यारी प्यारी मम्मा का भी दिन है। तो बाबा कहते हैं देवियों के भी कितने नाम हैं, तुमने सर्विस की है तब तो तुम्हारा गायन है। भारत जो वॉइसलेस था वह फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना, संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते बैठे हैं। संगम युग पर क्या बनते हैं, संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे ऊपर कौन सी दशा है बताओ, तुम्हारे ऊपर कौन सी दशा है, बृहस्पति। लेकिन बाबा ने कहा अविनाशी, एक है विनाशी, होता है कभी अदली बदली, आज है कल दूसरा हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठ है, बृहस्पति की दशा वो अविनाशी है। नहीं तो कईयों पर कितने टाइम के लिए दशा होती है फिर बदलती रहती है, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है। अब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। स्वर्ग के जो मालिक हैं, जो उनके लिए कहा जाता है बृहस्पति की दशा। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, कोई कहे हमको नहीं जाना है, बाबा के बच्चे उनको जाना ही जाना है, चाहे वहां जाकर के पद कम हो लेकिन जाना तो है ना। तो बाबा क्या बता रहे हैं, तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती। पढ़ाई लौकिक पढ़ाई में भी ऐसा होता है, कोई तो इतना अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई कम पद पाते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं बाकी पढ़ाई में दशाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो, गीता में भी है भगवानो वाच्य काम महाशत्रु है। पढ़ते भी है परंतु विकार को जीतते थोड़ी है। हर बार गीता पढ़ेंगे वही श्लोक रिवाइज करते हैं, पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन जो कहा है उसको तो प्रैक्टिकल में नहीं करते ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़ी हैं। गीता फिर भगवान ने कब कहा, 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, मुख्य है काम की बात, इसको ही पतित कहा जाता है। जो कामी बन जाते ना तो उसको बाबा कहते पतित कहा जाता है, उसी से सारे विकार आते हैं। मुख्य है काम की बात, इसको ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता है, हम पतित बने हैं, फिर बाप आकर के पावन बनाते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना है, ड्रामा अनुसार ज्ञान देना। कई बार बच्चे बाबा को कहते बाबा आप ये ज्ञान बाद में दे रहे हो, धीरे धीरे सुना रहे हो, सारा ज्ञान एक ही बार क्यों नहीं दे देते हो। बाबा कहते अगर एक ही बार दूंगा ये तो ड्रामा है, स्कूल में भी बच्चे जाते, सारी पढ़ाई थोड़ी पहली क्लास में बता देते। बाबा कहते ड्रामा अनुसार एक एक बात बाबा बच्चों को समझाते, पढ़ाते भी तो ड्रामा अनुसार है। तो बाबा कहते हैं अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता है, हम पतित बने हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते, कौन सी बात कहते हैं बाबा बार बार बताओ? पहले पहले अल्लाह की बात याद करो, पहले पहले अल्लाह बाबा जो बताते हैं उसको याद करो। बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्लाह की बात याद करो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी तुम समझते हो कि हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, सबको रास्ता बताते जाओ, पुरुषार्थ भी करो और दूसरों को भी बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो मुझे ही कहते हैं ना, किसी और को तो नहीं कहते। बाबा कहते मुझे याद करेंगे तब तो पावन बने हैं ना, पतित पावन मुझे ही कहते हैं ना। ये कोई को पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल पहले भी बाप ने कहा था माम एकम याद करो, ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं, खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, अब सोने के अंदर मिक्स करते हैं तब तो जेवर बनता है, कई पहले जमाने में तो बहुत मामूली सा डालते थे, और अभी तो देखो सारी खाद है और मामूली सा सोना होगा, ऊपर से पॉलिश कर देते हैं और उसमें कहेंगे सोने का है, लेकिन रियल है नहीं, खाद डल जाती है। तो बाबा कहते हैं खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा ही बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि आत्मा में खाद कैसे पड़ी है, उसको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं, पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम कौन थे? सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र ग्रस्त आश्रम था। अभी हम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, तुम डबल वैष्णव बनते हो। कैसे? खान पान भी शुद्ध, आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम डबल वैष्णव बनते हो, सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। ये है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और जो नॉलेज बाप में है, एक तो बाप को याद करते हो और जो नॉलेज बाप में है वह तुम धारण करते। डबल वैष्णव बाप को याद करते हैं, बाप की नॉलेज भी धारण करते। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वह राजाएं बनते हैं अल्प काल के लिए, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास करते हो। वहाँ कब अकाल मृत्यु होगी नहीं, वहाँ कब अकाल मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो, समय जब होता है तो समझते हो अब ये पुरानी खाल छोड़ नई लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते। वहाँ पर साक्षात फुल आयु पास करते हो, जब जाने का टाइम होता है तो वो साक्षात्कार होता है, बहुत खुश होते हैं कि हम जाकर के नया शरीर लेंगे। उसकी यादगार भी पहले जमाने में यहाँ पर भी करते थे कि भारत के अंदर कोई व्यक्ति पूरी एज बीत के जाता था और जाने पर कितना उसके लिए कितना कुछ बांटते भी थे, उसके ऊपर पैसे चढ़ा करके वार करके बांटते थे। तो बाबा कहते हैं सब यादगार क्या सच्चू का है, वहाँ पर तुम पूरी आयु भोगते हो और जाने के टाइम पर साक्षात्कार भी होता है कि हम जाकर के नया शरीर लेंगे। तो बाबा कहते हैं जब समय होता है तो समझते हो अब ये पुरानी खाल छोड़ नई लेनी है, तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, ये भी तो खुशी की बात है। पुरानी चीज को छोड़ नया लेना, बाबा कहते हैं कोई कम बात थोड़ी है, खुशी की बात है। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, और आज की एवरेज तो क्या हो गई है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो अकल्य मृत्यु होती ही रहती है, क्योंकि भोगी है ना, जिन बच्चों का योग यथारत है उनकी सर्व कर्म इंद्रियां योग बल से वश में रहती। बाबा बता रहे हैं क्योंकि जिन बच्चों का योग यथारत है उनकी सर्व कर्म इंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देती, वह है प्योर तो क्या धोखा देंगी, समय पर चलता है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कोई भी कर्म इंद्रियां तुमको धोखा नहीं देती हैं। कभी ऐसे नहीं कहेंगे हमारी कर्म इंद्रियां हमारे वश में नहीं, या तो कहीं मैं क्या करूं, मेरी फलानी कर्म इंद्रिय घूमती है फलानी घूमती है। तो बाबा कहते हैं वहां सच्चों में ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म इंद्रिया वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंच से ऊंच पद पाते हो, इसको कहा जाता है क्या कहेंगे, बृहस्पति की क्या बोलेंगे बोलो, अविनाशी दशा, अविनाशी बोलो साथ में तो पक्का रहेगा। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप बीज है ऊपर में, और उनको याद भी ऊपर में करते, भगवान को भक्ति में भी याद करते ना, तो बुद्धि कहाँ जाती, ऊपर जाती, नीचे थोड़ी बैठ के याद करते, बुद्धि भी ऊपर जाती है सिर भी ऊपर जाता है। तो बाबा कहते हो क्योंकि वो ऊपर जाते हैं, वो ऊपर में है बीज। तो बाबा कहते हैं बृहस्पति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, बाप बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह आते ही एक बार है अमर कथा सुनाने के। बाबा कितनी बार आते हैं, पूरे क्लब में एक ही बार आकर के 25 से पावन बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं अमर बनाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह आते ही एक बार है अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो या सत्यनारायण की कथा कहो, बाबा कहते कुछ भी कहो, अमर कथा या सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का अर्थ भी नहीं समझते हैं। सत्यनारायण की कथा से हम नरसिंह नारायण बनते, सत्यनारायण की कथा से हम नरसिंह नारायण बनते हैं, अमर कथा से तुम क्या बनते हो, अमर बनते। सत्यनारायण की कथा से नरसिंह नारायण और अमर कथा से अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते, बाबा बताते भी हैं उसका रहस्य क्या है, हर एक बात बाबा क्लियर करके बच्चों को समझाते हैं। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को वश में करना है। योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। دوسرا سویرے اٹھ کر پہلا پاٹھ پکا کرنا ہے کہ میں آتما ہوں شریر نہیں. ہمارا روحانی بابا ہم کو پڑھاتے ہیں یہ دکھ کی دنیا اب بدلنی ہے. ایسی بدھی میں سارا گیان سمرن ہوتا رہے. آج کا وردان ہے سرو خزانے کو کاری میں لگا کر پدموں کی کمائی جمع کرنے والے پدما پدم بھاگی شالی بھو. سرو خزانوں کو کاری میں لگا کر پدموں کی کمائی جمع کرنے والے پدما پدم بھاگی شالی بھو. ہر سیکنڈ پدموں کی کمائی جمع کرنے کا وردان ڈراما میں سنگم کے سمے کو ملا ہوا ہے. ہر سیکنڈ پدموں کی کمائی جمع کرنے کا وردان ڈراما میں سنگم کے سمے کو ملا ہوا ہے. ایسے وردان کو سوئم پرتی جمع کرو اور اوروں کے پرتی دان کرو. ایسے ہی سنکلپ کے خزانے کو کون کون سے خزانے ہیں, ایسے ہی سنکلپ کے خزانے کو گیان کے خزانے کو ستھول دھن روپی خزانے کو کاری میں لگا کر پدموں کی کمائی جمع کرو. کیونکہ اس سمے ستھول دھن بھی ایشور ارپن کرنے سے ایک نیا پیسہ بھی رتن سمان ویلیو کا ہو جاتا. دل سے ایک پیسہ بھی کرتے ہیں نا تو اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے, رتنوں کے سمان ہو جاتی ہے. باقی دل سے نہیں کرتے ہیں تو کتنا بھی تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. تو بابا کہتے ہیں اس سمے ستھول دھن بھی ایشور ارتھ سمرپن کرنے سے ایک نیا پیسہ بھی ایک رتن سمان ویلیو کا ہو جاتا ہے. تو ان سب خزانوں کو سویم کے پرتی و سیوا کے پرتی کاری میں لگاؤں تو پدما پدم بھاگی شالی بن جائیں گے. سلوگن, جہاں دل کا سنیہ ہے وہاں سب کا سہیوگ سہج پراپت ہوتا ہے. جہاں دل کا سنیہ ہے وہاں سب کا سہیوگ سہج پراپت ہوتا ہے. اب ایک اشارے آتم استھتی میں رہنے کا ابھیاس کرو, انترمکھی بنو. اب ایسے ٹرانسپیرنٹ پاردرشی ہو جاؤ جو آپ کے شریر کے اندر آتما وراجمان ہے وہ اسپشٹ سبھی کو دکھائی دے. سب کے شریر کے اندر کیا آتما ہے لیکن وہ ریئلائزیشن ہو. اب ایسی ٹرانسپیرنٹ پاردرشی ہو جاؤ جو آپ کے شریر کے اندر آتما وراجمان ہے وہ اسپشٹ سبھی کو دکھائی دے. آپ کا آتمک سوروپ انہوں کو بھی اپنے آتمک سوروپ کا ساکشتکار کرائے. اس کو کہتے ہیں اویت اس کو کہتے ہیں اویت و آتمک استھتی کا انبھو کرانا. آج پیاری مما جی کا ہم سنیں گے وشیشتا. آج کا ہے 23 تاریخ سوموار. نردوش بھاونا کے گن سے شیتل نردوش بھاونا کے گن سے شیتلتا کی شکتی سے سمپن. مما کی وشیشتا کیا تھی؟ نردوش بھاونا کے گن سے شیتلتا کی شکتی سے سمپن. مما نے کبھی بھی کسی کے دوش و اوگن نہیں دیکھے, ہر بچے کو نردوش بھاو سے دیکھا. میرے بچوں کا کوئی بھی دوش نہیں ہے, مایا کا راجی ہے. مایا بچوں کو پچھارتی ہے, ان کی وجے نشچت ہے ہی. ایسی نردوش بھاونا کے گن سے اس میں شیتلتا کی شکتی آتی گئی. ان سے ہر بچے کو شیتلتا کی چھایا کا انبھو ہوتا, ہر ایک ان کے سمیپ جانا چاہتا. ایسے ہم بھی شیتلتا کی شکتی سے سمپن بننے کے لیے اپنی بھاونائیں نردوش بنانی ہے. अच्छा ओम शांति ओम शांति। जैसा कि आपको बताया, कल प्यारी मातेश्वरी जी का दिवस है। मातेश्वरी जी के अंदर तो इतनी विशेषता है, उनको लिमिट में गुण लिखना या बताना वो तो हम कर ही नहीं सकते हैं। जितना उन गुणों को सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, उतना ही हमें बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। अच्छा, इसमें कोई बट्टी तो भाई आए हुए हैं? कलकत्ता श्याम नगर के कोई नहीं है ना? अच्छा, पहले से बता रही, बहुत सारे भाई बहने उठ रहे हैं, जो भी आए हुए हैं, सभी का नाश्ता और दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, नीचे नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जैसा कि आपको बता रहे थे, कल प्यारी मातेश्वरी जी को भोग स्वीकार कराया जाएगा और भोग के बाद सभी को ही और सबको फल का पैकेट मिलता है। वो तो कल की सूचना फिर कल बताएंगे, तो पहले से आपको बताया जा रहा है। अच्छा ओम शांति, कल से भी एक भट्टी का नया ग्रुप आ रहा है, तो उनकी भी कल से भट्टी यहाँ पर आरंभ होगी। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठे।